ओम शांति, ओम शांति। सभी बहुत खुश हैं, बहुत आनंद में हैं। तो अभी हम सभी आज के कार्यक्रम की ओर चलते हैं। तो अभी हम सभी परमात्मा की याद में तो बैठेंगे ही, और मैं मंच पर आज के कार्यक्रम के लिए अपने वक्तव्य देने के लिए, आशीर्वचन देने के लिए आमंत्रित करती हूँ लखनऊ से पधारी हमारी आदरणीय ब्रह्म कुमारी राधा दीदी जी। आएंगे मंच पर, अपना सम्मान्य स्थान ग्रहण करेंगे एवं अपनी एक्सपीरियंस के साथ आज के टॉपिक पर अपने वक्तव्य रखने के लिए आमंत्रित करती हूँ आदरणीय मिस्टर सुनील कुमार वर्णवाल भाई जी। आइए से आप भी आएंगे मंच पर, अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और अभी हम सभी एक मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे। आदरणीय डॉक्टर विनोद कुमार सिंह भाई जी, डायरेक्टर हैं आप, मंच पर आएंगे, मैं स्थानीय ग्रहण करेंगे। ओम शांति। जब परमात्मा से हम सभी कनेक्ट होते हैं तो एक असीम शक्ति का आभास होता है। और हम सभी यहाँ पर दो दिन से उस शक्ति को भरपूर कर ही रहे हैं, और यहाँ से जब जाएंगे तो साथ लेके जाएंगे या छोड़कर जाएंगे? कौन कौन साथ लेके जाएंगे? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और रोज रोज हमें अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए प्रशासन में और वैल्यूज को और कौन से ऐड किए जाएं और अच्छे से उनकी कैसे उन्नति की जाए। रोज हमें अनुभवी वक्तागण मिल रहे हैं जिनके द्वारा हम अपनी आत्मशक्ति को बढ़ा रहे हैं, अपने मूल्यों को बढ़ा रहे हैं। शुभकामना यही है कि आप जिस क्षेत्र में जाएं वहां जाकर भरपूर प्रयोग करें और हर प्रकार की परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाएं। आज भी बहुत अच्छा टॉपिक है कि किस प्रकार से हम अपने आत्म सम्मान में और अधिक वृद्धि कैसे करें, अपने आत्मविश्वास को और अधिक कैसे बढ़ाएं, जिसके लिए हमारे बीच आदरणीय राधा दीदी जी भाई साहब पहुंचे हुए हैं, जिनका बहुत तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और आप सबका भी इस कॉन्फ्रेंस हॉल के सभागार में बहुत बहुत स्वागत है। हम तो यही कहेंगे, आप सभी शांतिवन में आए तो शांतिवन में आई बाहर, आप सभी के जीवन में आ रहा है निखार, दिल में तो है बहुत उद्गार, पर आप सभी का स्वागत है बारंबार बारंबार बारंबार। इसी स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करूंगी कि मंच पर विराजमान हमारे वक्ता गुणों का स्वागत तिलक और गुलदस्ते के द्वारा करेंगे ब्रह्मा कुमारी बहनें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी दीदियों का। आज का जो विषय जिसको हम बहुत अच्छे से सुनेंगे और निश्चित अपने आत्मविश्वास को, अपने आत्मसम्मान को और अधिक बढ़ा करके आगे आने वाली चुनौतियों पर विजय प्राप्त करेंगे। आत्मसम्मान के बिना जिंदगी अधूरी है, इसे बनाए रखना जरूरी है। आत्मसम्मान है तो जिंदगी है, नहीं तो सब कुछ बेकार है। अपने आत्मविश्वास की रक्षा करना सीखें, क्योंकि यही हमारी असली पूंजी है। अपने आत्मसम्मान को कभी गिरने ना दें, क्योंकि यही हमारी पहचान है। आत्मविश्वास ही वो चीज है जो मजबूत बनाती है, इसलिए उसे कभी भी भूले नहीं। तो अपने आत्मविश्वास को, आत्मसम्मान को और अधिक कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हमारे बीच 40 वर्षों की अनुभवी तपस्वी राजयोगिनी हमारी आदरणीय राधा दीदी जी यहाँ पर उपस्थित है। आप देख ही रहे हैं उनके चेहरे से कितनी गंभीरता दिखाई देती है, लेकिन गंभीरता के साथ आप सरलता की भी मूर्ति हैं। आप लखनऊ में रहकर वहां के आसपास पूरे क्षेत्र को संभालते हुए हर एक को मोटिवेट करते हैं, परमात्मा का ध्यान के द्वारा भरपूर करते हैं और हर प्रकार से अपने तन मन धन समय संकल्प श्वास सब कुछ आपने परमात्मा पर समर्पित करके अनेकों का कल्याण कर रहे हैं। आपका कर्नाटक में जन्म अवश्य हुआ, लेकिन फिर भारत में आकर, भारत के और भी अनेक जगहों पर जाकर आपने परमात्मा संदेश को बखूबी बहुत अच्छे से चारों तरफ फैलाया है। बहुत प्रकार के मेले सम्मेलन और जिस प्रकार से भी सेवा हो सकती है, आप पूरी तरीके से बाबा की सेवा में, परमात्मा सेवा में, समाज सेवा में लगे ही रहते हैं। बराबर ये संकल्प चलता ही रहता है अब कौन सा प्रोग्राम किया जाए जो और अच्छे से लोगों तक ये संदेश पहुंचाया जाए। तो आपने अपने जीवन को इतना अच्छा भरपूर किया, मैं तो आपके लिए इतना ही कहना चाहूंगी। आप हैं परमात्मा के विशेष रतन, आपने विश्व सेवा में लगाया है तन मन धन। आप परमात्मा के हैं, परमात्मा की याद में रहते हैं मगन। आज के दिन आपके लिए हमारा है सत शत नमन, शत शत नमन। तो आप परमात्मा की सेवा में सदा लगे रहते हैं और इसीलिए आपको अवार्ड भी मिला हुआ है, और वो अवार्ड है आपको महिला प्रभाव की तरफ से, विशेष प्रभाव की तरफ से आपको विशेष महिला, उच्च महिला का अवार्ड मिला। और आपने उसको लेकर के परमात्मा को ही धन्यवाद किया कि परमात्मा ने ही मुझे ये अवार्ड दिलाया, स्वयं सिद्ध महिला अचीवर अवार्ड। जोरदार ताली बजाएंगे हमारी आदरणीय दीदी जी के लिए। और हम की मधुर वाणी से आज के इस विषय पर उनके उद्बोधन सुनेंगे, उनके आशीर्वचन भी लेंगे और उनके वक्तव्य के द्वारा अपने आत्मविश्वास को और बढ़ाएंगे। आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति। आप सभी पिता परमात्मा के घर में पधारे। पिछले 3 दिनों से वो बरसात भी हो रही है, तो आप सबके ऊपर ज्ञान की बरसात भी हो रही नहीं हो रही। प्रकृति भी आपको हर प्रकार से सहयोग दे रही है। कई ऐसे राज्य है अभी भी गर्मी का एहसास होता है, लेकिन इस प्रकृति की अर्बुदा पर्वत हमारे बम्मा बाबा दादियों की तपस्या स्थली है, उनकी तपस्या का ये फल है यहाँ का शांत वातावरण। और प्रकृति की सुंदर छटाओं के बीच में आप उस ईश्वरीय निमंत्रण को स्वीकार करके पहुंच गए हो, इसीलिए आप सभी अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते हो। वो भाग्यशाली हो नहीं हो, न जाने कितनों के पास निमंत्रण गया था, कितनों ने हां भरा, रिजर्वेशन कराया और ट्रेन में चढ़ करके फ्लाइट में चलकर कितने आए। तो आप सभी कौन हो, बहुत बहुत भाग्यशाली। इसलिए अपने भाग्यशाली के लिए अपने लिए एक ताली जरूर बजा लीजिएगा। कई बार अपने भाग्य का हमें कई बार पता नहीं पड़ता, दूसरा वर्णित करता है तो समझ में आता है सचमुच में हम भाग्यशाली है। भगवान के द्वारा निर्मित इस यज्ञ में रहने का मौका मिल रहा है। सब खुश हो भाई, सब खुश हो, किसी को कोई चीज की कमी रहने की, खाने पीने की, सब खुशी का अनुभव कर रहे हैं। और लगातार 3 दिन से आप ज्ञान के बिंदुओं को प्राप्त कर ज्ञान रत्नों से अपने आप को श्रृंगारित करके, मैं तो देख रही हूँ, पहले दिन भी आपको देखा था, आज देख रही हूँ तो सबके चेहरे खिले हुए मिल रहे है। यानी आप खुद बताइएगा सबके चेहरे क्यों, क्या के वाइब्रेशन का, वातावरण का, ज्ञान का, और हमारी दादियां दीदियों का, इनकी तपस्या का फल कहेंगे, आप सब उन वाइब्रेशंस को फील कर रहे हैं। तो ऐसे समय पर आत्म सम्मान के, आत्म जागृति के, आत्मा को सशक्त बनाने की जो बात सुनना चाहते हो, फील करना चाहते हो, आप सभी फील कर रहे हो ना, आप सभी है ना, आप सभी अनुभव कर रहे हो सचमुच में। ये चिंतन, ये ज्ञान बिंदु हमें लगातार मिलते रहेंगे तो इंटरनली आत्मा क्या हो जाएगी, सशक्त होती जाएगी, आत्मा शक्तिशाली बनेगी। ऐसे तो आत्मा का गुण ही है, आत्मा का स्वरूप ही, आत्मा शक्तिशाली है ही अपने मूल रूप में। तो वर्तमान समय हम सभी यहाँ जो बने बैठे हुए हैं अपने आत्म सम्मान को बढ़ाने के लिए, जब से हमारा केंद्र सरकार ये आया है 14 साल पहले से, तब से हमने एक शब्द सुनना शुरू किया 2014 से, आत्मनिर्भर भारत। सुना होगा ना, आत्मनिर्भर भारत, आत्म सम्मान। और वर्तमान में भी कुछ खास ही सुन रहे हैं, जब से टैरिफ लगा है हम आत्मनिर्भर बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, है ना। तो आत्मनिर्भर का मतलब क्या है? हम आत्मा को जानेंगे तब तो आत्मनिर्भर बनेंगे। तो आत्मनिर्भर की परिभाषा क्या है? आत्मसम्मान की, आत्मस्वमान की परिभाषा क्या है? तो पहले दिन जब आप सबने एक लेसन सुना था, कौन सा लेसन सुना था? पहले दिन का लेसन किसको याद है? आप सभी कौन हो भाई? पक्का पक्का? यह पाठ पढ़ाया था इसीलिए सुना। एक है सुनना, एक है समझना। समझ रहे हो इसीलिए, जैसे हमारी दीदी ने जो 15 मिनट पहले जो आइस ब्रेकिंग कराए ना, इसका मतलब आप लोग सुन रहे हो, समझ रहे हो। अगर सिर्फ सुनते समझते नहीं तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग एक्शन नहीं करते, तो इसका मतलब आप सभी समझ भी रहे हो। तो पहला लेसन ही हम सबको मिला था, कौन सा मिला था? जिस स्वमान की, सम्मान की, शक्ति की जागृति हम करना चाहते हैं, जिस स्व आत्मा को निर्भर बनाना चाहते हैं, वो मैं एक आत्मा हूं। मेरी आत्मा या मैं आत्मा हूं? मैं हूं ही आत्मा। आत्मा मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है? मैं हूं ही आत्मा, मेरी रियल आइडेंटिटी। मैं हूं ही चेतन शक्ति आत्मा। जिस आत्मा में गुण और शक्तियां है या नहीं है, जैसे कोई मोबाइल को खरीदते हो तो क्या होता है, उसमें बहुत सारे ऐप्स इनबिल्ट होते हैं। तो ऐसे आप और हम सब में क्या हो चुका? आप और हम सब में आत्मा शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आत्मा सातों गुणों से युक्त है। अंदर वो बिन बिल्ट है। तो धीरे 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 क्या हो गया, हम इस पार्ट में, इस ड्रामा में, इसमें आ करके धीरे धीरे हमारे अंदर लेयरिंग आते चले गए, पोस्ट है, पोजीशन है। तो धीरे धीरे क्या हो गया, हमारे वो जो आत्मा की शक्तियां थी वो क्या हो गए, अंदर छिपती चली गए। हम अपना परिचय, अपनी आइडेंटिटी क्या हो गया, पोस्ट के अकॉर्डिंग, देश के अकॉर्डिंग, धर्म के, भाषा के अकॉर्डिंग अपनी आइडेंटिटी हमने फीड कर ली। तो जिसके कारण से हम अपने पोस्ट पोजीशन के आधार पर फिर क्या, हम इंडिपेंडेंट बनते चले गए। मुझ आत्मा को क्या होगा, सम्मान दूसरा देगा, मुझे सम्मान बाहर से मिलेगा। यही तो हमने अपने आप को सेट किया ना। मेरे सम्मान स्वमान की बात हमने डिपेंडेंट हो करके बाहर से हमने चाहना रखना शुरू किया। तो जिस कारण से हमारे आत्मा की शक्ति कमजोर हो गई, एक्वायर चीजें हमारे अंदर बाहर से, मेरी पोस्ट है, पोजीशन है, प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग में सबऑर्डिनेटर है, बॉस है, मेरे अंडर है, उनके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते, एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट में कुर्सी के आधार पर हमने चाहना रखना शुरू किया। जिस कारण से हम क्या हो गए, अंदर से कमजोर होते गए, डिपेंडेंट होते चले गए। तो इसीलिए सबसे पहला लेसन आप सबको क्या मिला, मैं एक चेतन शक्ति, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। आत्मा तो है ही शांत स्वरूप, आत्मा तो है ही शक्ति, आत्मा तो है ही खुशनुमा। मुझे खुशी चाहिए नहीं, मैं हूं खुशी को रिफ्लेक्ट करने वाली, मैं खुशी को देने वाली, शक्ति को देने वाली, प्यार को देने वाली, सम्मान को देने वाली। जब हम अपने आत्म स्वरूप को जब जागृत करेंगे तो आत्मा की शक्ति क्या हो जाएगी, और साथ ही साथ जो आज आपको लेसन मिला, तो क्या लेसन मिला, मैं तो आत्मा हूं समझ में आ गया। अब मुझे आज क्या मिला, जहां से मुझे अपने आप को चार्ज करना है, क्योंकि आप और हम सब एक सिस्टम में आए हुए हैं, और जो चीज सिस्टम में आ जाती है उसकी निशानी क्या है, जो भी चीज सिस्टम में आएगी धीरे धीरे डिप्लीट मोड में आएगी, एक नेचर है। सवेरे आपने साफ सुथरे कपड़े पहने थे, कपड़े पहन करके आए थे, फिर शाम तक क्या हो जाएगा, शाम तक धीरे धीरे मैले होंगे, क्यों नहीं होंगे। आप कहेंगे अरे भाई मैंने तो साफ सुथरे पहना था, प्रेस किया हुआ पहना था, ये प्रकृति नेचर है। नेचर के संग में जो आएंगे तो जरूर है कि डिप्लीट मोड में तो आना होगा, फिर सवेरे उठेंगे, फिर नहा धो करके फिर दूसरे वस्त्र पहनेंगे। ये तो चक्र है ना, चक्र, उसको तो हमने स्वीकार कर लिया। ऐसे बेहद का समय है, उसके अकॉर्डिंग आप और हम सभी सिस्टम के अकॉर्डिंग धीरे 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 जब डिप्लीट मोड में आ जाते हैं, तब उस पिता परमात्मा ने आकर के हम सबको एक समझ दी। क्या समझ दी? कि आप चेतन शक्ति आत्मा हो। आप आत्मा को कनेक्शन किसके साथ जोड़ना है? जब मेरे साथ में कितना भी मेरा नियर और डियर होगा, आपके मोबाइल को चार्ज करेगा? आप अपने साथियों के मोबाइल को चार्ज करते हो? मेरा नियर है, डियर है, उसका चार्जिंग प्रोसेस क्या है? आप अपने मोबाइल को चार्ज करना चाहते हो, उसका प्रोसेस क्या है? एक्सटर्नल चार्जर्स के साथ, पावर के साथ कनेक्शन जोड़ेंगे तो पावर का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे अभी हम अपने आप को एम्पावर करना चाहते हैं, अपने आप को शक्तिशाली बनाते, सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना चाहते हैं, तो सिस्टम में आए हुए व्यक्ति से हम कभी भी नहीं बन पाएंगे। सिस्टम में आए हुए किसी चीज से हम अपने आप को शक्तिशाली नहीं बना पाएंगे। सिस्टम से डिटैच रहने वाला एक सुप्रीम पावर, उससे कनेक्शन जोड़ेंगे। तो ये मेडिटेशन क्या है? एक सिंपल सा मेथड है। आप सबको आज से 25 साल पहले एंड्रॉयड मोबाइल चलाना आता था भाई? आप सबको आता था? पता ही नहीं था। उसके बाद में कौन सा? एक छोटा सा मोबाइल हमारे हाथ में आया, एक लाल बटन, एक हरा बटन। दो बटन छोड़ करके हमको तीसरा बटन का पता भी नहीं था। और एक बार चार्ज कर देते थे, तीन तीन दिन तक उस मोबाइल को चार्ज करने की जरूरत ही नहीं थी। तो ऐसे जमाने में हम लोग गुजरते हुए आए हैं। और आज का समय क्या है? आज का समय एंड्रॉयड का समय है। इस एंड्रॉयड के समय में सबके पास, मुझे लगता है कि शायद ही हमारी माताएं, सबके पास है ना भाई? आप सबको चार्ज करना भी आता है ना, व्हाट्सएप आदि मैसेज खोलना सब कुछ आता है ना, सीख लिया ना आप सबने, है ना? इजी मेहनत लगी आपको, इजीली सीख लिया ना। जैसे उसको सीख लिया, और साथ साथ हमारी माताओं को यह भी आता डिलीट करना, जो मैसेज यूजफुल नहीं है उसको डिलीट भी करते हैं, और जो यूजफुल होगा उसको इंस्टॉल भी करते हैं, ये भी सीख लिया, आ गया ना। तो ऐसे ही अवेयरनेस, अपने आप को स्टीम को बढ़ाना है, आत्मा को शक्तिशाली बनाना है, तो सबसे पहले अवेयरनेस चाहिए। तो अवेयरनेस किस बात का? सब कुछ संसार में है, सब कुछ है, लेकिन सारी चीजें तो डाउनलोड नहीं करते ना, क्योंकि हम हैंग हो जाएंगे। इसे मोबाइल हैंग हो जाता है तो क्या होगा? कितनी भी अच्छी कंपनी का क्यों ना हो, हैंग होगा, डिस्चार्ज होगा तो किसी काम का नहीं। आज ऐसी परिस्थिति हो गई तो हमारे अंदर एक ब्लेमिंग नेचर हो गई, इनके कारण से, इनके कारण से, इनके कारण से। मैं जो गुस्सा करता हूं ना, गुस्सा करने का कारण क्या है? कारण क्या है? सिस्टम ऐसा है, मेरे पड़ोसी, मेरे ऑफिसर ऐसे, मेरे बॉस ऐसे, मेरे सबॉर्डिनेटर ऐसे है। हमारे अंदर क्या होगा? ब्लेमिंग नेचर आ गई। तो ब्लेमिंग नेचर के कारण क्या हो गया? कभी भी हमने सेल्फ रियलाइज नहीं किया कि मेरे अंदर भी चेंज कहां ले जाते। हमेशा दूसरों के प्रति ब्लेमिंग, दूसरों को चेंज, इंतजार किस बात का किया? हमारे टाइम, हमारी एनर्जी, हमारा सब कुछ, हमारा फोकस कहां रखा? दूसरों को चेंज, जिसको ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए ना। क्योंकि मैं ऐसे प्रदेश में, ऐसी राजधानी में बैठी हूं, बहुतों से मेरा संपर्क है, आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। हमेशा सिस्टम को ब्लेम करेंगे, हमेशा इसको, दूसरों को ब्लेम करेंगे, लेकिन कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। तो जब ब्रह्मा कुमारी इसके संपर्क में आकर के इस मेडिटेशन के माध्यम से जब खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू किया, टाइम, एनर्जी, शक्ति जब अपने ऊपर लगाना शुरू किया, रिजल्ट स्टार्ट। हमने अपना समय, शक्ति दूसरों पे लगाया, रिजल्ट क्या हो गया? रिजल्ट क्या हुआ? जीरो। थोड़ा सा हमने अपना समय, शक्ति, एनर्जी स्वयं पर लगाना शुरू किया तो रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता। आप सभी भी देख लीजिएगा, आप सब अपने आप से पूछिएगा, खुद फील कर रहे हो? तीन दिन में आपके अंदर रिजल्ट फील हो रहा? तीन दिन ही? तीन दिन के अंदर जो फील कर रहे हैं, हाथ उठाइएगा, कौन कौन है जो हमारे अंदर चेंज स्टार्ट हो गए? हमारे अंदर हम फील कर रहे हैं, अपने आप को सशक्त महसूस, हर सिचुएशन को हम हैंडल कर लेंगे, फेस कर लेंगे, हुआ नहीं हुआ? 3 दिन की मेडिटेशन की जो प्रैक्टिस ने इंटरनली अपने आप को स्ट्रांग बनाया। तो वो कैसे बनाया, आप सबने भी देखो 3 दिन से दीदियों को देख रहे हो और सबसे बड़ी बड़ी दीदियों का आपका सौभाग्य है। हमारी जो बड़ी दीदी कल मिले ना एडमिनिस्ट्रेटर, अमेरिका में रहती है दीदी, तो 5-6 महीने ही दीदी यहाँ आती है और इत्तेफाक का समय था इस समय में। कहीं भी इनके फेस से आपको लगा इंटरनली वो कमजोर है, किसी भाषा से उनके पास कोई अच्छे अच्छे कपड़े, कोई ऑर्नामेंट नहीं थे, बहुत सारे साधन नहीं थे, इंटरनली कैसे लग रही थी सारी दीदियां, कैसे लग रहे थे उनके फेस को देख करके। जितनी भी दीदियों को आप लोगों ने, दादियों को देखा, कैसे लग रहे थे, जिन देवियों का गायन है, अम्बा, काली, दुर्गा, सरस्वती, इतने इंटरनली शक्तिशाली। तो ये सब कहां से हुआ, ये मेडिटेशन हमको सिखाता है। मेडिटेशन किसी और को नहीं, अपने ऊपर काम करना शुरू करो, अपने आप को, स्वयं को पहचानो, मैं स्वयं शक्तिशाली आत्मा हूं। राजा का बच्चा क्या कहलाता है, राजा का बच्चा राजकुमार कहलाता है। तो भगवान सर्वशक्तिवान के बच्चे हम है कौन, कमजोर थोड़ी होंगे। तो सर्वशक्तिवान परमात्मा के हम सब बच्चे शक्तिशाली है। तो इस स्वमान को जब हम जागृत करेंगे तो वो शक्ति, वो पावर हमारे अंदर ट्रांसमिट होना शुरू हो जाती। तो मेडिटेशन कुछ और नहीं, मेडिटेशन ना किसी चीज को हम पकड़ रहे हैं ना किसी को छोड़ रहे, हम अवेयर है। ये मेडिटेशन हमको अवेयरनेस क्या सिखाता है, मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है, उस चार्जर के साथ कनेक्ट होकर के अब मैं क्या कर रही हूं, अपने आप को चार्ज कर रही हूं। और चार्ज मोबाइल कैसे होंगे आप बताएं, चार्ज मोबाइल कैसे होते हैं, आप सबने देखा है, आप सबके घरों में फोटो है वो वाली, मैं बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा। चार्ज मोबाइल के फोटोज सबने घरों में रखा है, रखा नहीं रखा, सबके घरों में आप देख लीजिएगा, बड़े बड़े महात्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, देव आत्माएं, उन सबके फोटो देखा है आपने, वो कौन है, वो चार्ज्ड है। देवताओं को देखिएगा क्या देखा है आप, विष्णु जी को सबने देखा है, विष्णु जी को कैसे होते हैं, विष्णु जी थोड़ा एक्ट करिएगा कैसे होते हो, विष्णु जी को कैसे लेटे हुए दिखा है, कैसे दिखा है, थोड़ा सा एक सेकंड के लिए कैसे दिखा है, एक बार हाथ दिखा करके देखिएगा, वो भी किस पे, शेषैया पे, और लेटे भी हैं तो कैसे, बड़े मस्त होकर। और लक्ष्मी जी कहां है, उनके पैरों में दिखाया। इसका मतलब क्या है पता है, उन्होंने अपनी लाइफ की प्रायोरिटी सेट की थी। इतने खुश, इतने स्ट्रांग कैसे बने, उन्होंने अपनी लाइफ की प्रायोरिटी सेट की थी, उसके अकॉर्डिंग चल रहे थे, तब लक्ष्मी जी उनके चरणों में आ गए। तो उनकी प्रायोरिटी क्या थी, जो ये मेडिटेशन हमको सिखाता है। सुनिएगा भी कौन सी, आपको भी सेट करना है। तो हमारी लाइफ की जब तक हम प्रायोरिटी को सेट नहीं करेंगे, तब तक हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा नहीं। तो उन्होंने अपनी लाइफ में सेट किया हुआ था, सबके हाथ में है 5 उंगलियां, सभी भला अपने हाथ को आगे कर सकते हो। सबसे पहले है संकल्प, सेकंड समय, थर्ड स्वास्थ्य, फोर्थ श्रेष्ठ कर्म, और लास्ट में क्या है, संपत्ति। ये लाइफ के सीक्वेंस है। सबसे पहला संकल्प, आप सभी संकल्प, कल भी दीदी ने बहुत अच्छा संकल्प की परिभाषा हमारी करेंसी को जोड़ा, हम सबके पास करेंसी है। आप अपनी करेंसी को क्या करते हो, जहां मर्जी आए खर्च कर लेते हो, 10 रुपए की चीज खरीदने जाएंगे 20 रुपए दे देंगे, क्योंकि मेरे जेब में 100 लाख रुपए रखा हुआ है, 10 रुपए की चीज अगर मुझे चाहिए तो मैं 20 रुपए दे दूंगी। करते हो नहीं करते हो, करते हो ऐसा, कभी नहीं करते हो, क्यों क्यों नहीं करते हो? चाहे कितना भी पैसा मेरे पास पड़ा हुआ हो, 10 रुपए की चीज खरीदने जाएंगे, बार्गेनिंग करेंगे, 8 रुपए में ही चीज मुझे मिल जाए, 2 रुपए मेरी बचत हो जाएगी, उसकी बचत की सही यूज का अवेयरनेस है या नहीं सबके पास? तो सब अवेयर है, इसीलिए जैसे धन के प्रति अवेयर है, क्यों दीदी ने कल करेंसी कहा? क्योंकि धन के प्रति अवेयरनेस है, ऐसे हमारे संकल्प के प्रति, हमारे संकल्प, हमारी सोच कहीं वेस्ट के खाते में तो नहीं जा रहे, गलत खाते में तो नहीं जा रहे, तो इस थॉट के प्रति अवेयरनेस होना। तो अवेयर होकर के चलेंगे तो उनका समय कहां जाएगा? पहले बीज अच्छा होगा, बीज से निकलने वाली हर चीज क्या होगी? तो समय श्रेष्ठ कार्य में जाएगा। तो बहुत से लोगों की जो शिकायत है ना, समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। क्यों नहीं समय मिलता है? जब सोच हमारे श्रेष्ठ होंगे तो ऑटोमेटिकली अच्छे काम के लिए समय निकल ही जाएगा। जब हमारा समय अच्छा होगा, हमारा स्वास्थ्य, आप समय कहां निकले, मॉर्निंग वॉक के लिए भी निकालेंगे, योगा के लिए भी निकालेंगे, मेडिटेशन के लिए भी निकालेंगे, अपने काम को समय पे, एज एडमिनिस्ट्रेटर समय से जाना, समय के प्रति अवेयर होकर के समय से आना, समय का हमारा क्या होगा? एक सही सदुपयोग हो जाएगा। सदुपयोग होने के कारण हमारे कर्म ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? हाँ, हमारा कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा। कर्म श्रेष्ठ, समय भी श्रेष्ठ, संकल्प भी श्रेष्ठ, समय भी श्रेष्ठ, कर्म भी हमारा समय श्रेष्ठ होता चला जाएगा। तो ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, तो संपत्ति दूर जाएगी, नजदीक आएगी, कहां जाएगी? तो दासी बनने का मतलब क्या है? तो उसके पीछे हम भाग नहीं रहे, वो हमारे पास आ रहे। तो आप सभी यहां माउंट आबू में अभी यहां देख रहे, बाबा के घर में आपको किसी चीज की कमी देख रहे? किसी चीज की कमी है? लाइट जाती है तो 1 घंटा तक आ ही नहीं रही है, पानी नहीं आ रहा नल में, ऐसा कभी देखा? नाश्ता 8 बजे का कहा था, पता नहीं 9 भी बजा है अभी। घर में 4 मेहमान आ जाते हैं तो हम सबको पता है, घरों में माताएं बताओ, सब बताओ, 4 मेहमान आते हैं तो एज इट इज आपका दिनचर्या चलती है? पूरा ही अपसेट हो जाता है। 4 मेहमान को हम क्या कर पाएंगे? एकोमोडेट नहीं कर पाते। 4 मेहमान को हम सेट नहीं कर पाते। तो यहां हजारों की तादाद में 8 बजे देखो तो नाश्ता मिल रहा है, 12 बजे खाना तैयार है, कमरे में जाओ तो साफ सुथरा सब कुछ मिल रहा है, बाहर जाए तो गाड़ी मिल रही है। ये सब क्यों? हमारी लाइफ की सीक्वेंस सेट की हुई है। ये मेडिटेशन हमारी इस लाइफ की सीक्वेंस को सेट करने के कारण सब कुछ है, कमी किसी चीज की नहीं, संपत्ति की भी कमी नहीं, सब कुछ हमारे पास है। लेकिन वर्तमान समय जब हम डिस्चार्ज हो जाते हैं, सिस्टम में आ जाते हैं, तो हमारा सीक्वेंस क्या हो जाता है? यूं हो जाता है। अब यूं हो गया तो पहला हमारी लाइफ की प्रायोरिटी क्या हो गई? बताइए, सब बताइए। हमारी लाइफ की प्रायोरिटी हो गई संपत्ति। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हमारे जीवन का लक्ष्य, कई बार सुना है, क्या करे पापी पेट के लिए कमाना पड़ता है। पेट पापी है? पेट कितना खाता है आप देखिएगा। आप पूरे महीने का बजट बनाइएगा, सबसे ज्यादा खर्चा खाने के लिए जाता है और चीजों के लिए जाता है। सबसे देखो, हमारी माताएं बता रही है, सबसे कम खर्चा हमारा किस में जाता है? खाने में जाता है। हमें खाने के लिए नहीं, यहां हमारी दादियां कहते थे, एक है पेट के लिए कमाना, एक है पेटियों के लिए कमाना। हमारे सीक्वेंस बदल गया तो फिर क्या हो गया? अभी हम, हमारा पहला क्या हो गया? पेट तो भर गया, लेकिन अभी हमको किसके लिए कमाना है? पेटियों के लिए। और पेटियां पता नहीं कितनी है, वो 1 भी भर गई, 2 भी भर गई, 3 भी भर गई, बदल गया ना। तो ये सबसे पहला हमारा जो दिनचर्या में हमारी लाइफस्टाइल में क्या आ गया, सबसे पहली संपत्ति आ गई। जब संपत्ति को पाने के लिए हमने कर्म क्या करना पड़ा, अनुभवी बैठे हुए सभी बताओ, जब बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया रखे है, तो रुपया जब बड़ा हो गया तो कर्म कर्म क्या हो गए, हम सबके कर्म बिगड़ने लग गए। जब कर्म बिगड़े, सवेरे से लेकर रात तक लगे पड़े हैं, जब देखो दौड़ रहे हैं दौड़ रहे दौड़ रहे लगे पड़े हुए हैं, तो उसका असर हमारे स्वास्थ्य के ऊपर आने लग गया, स्वास्थ्य बिगड़ने लग गया। स्वास्थ्य जहां बिगड़ा, हमारा समय कहां जाने लग गया, इस हॉस्पिटल जाओ उस हॉस्पिटल जाओ, वो पेथी ये पेथी, वो वाला टेस्टिंग ये वाला टेस्टिंग, ये इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस, सवेरे से लेकर उस डॉक्टर के पास लाइन लगा रहे, इस डॉक्टर के पास लाइन लगा रहे, तो हमारा समय इन चीजों में, तो जब समय यहां जाएगा तो हमारे संकल्प कैसे चलेंगे, हमारे संकल्प कैसे चलेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम डिमोटिवेट होने लगे। एक्सटर्नल चीजें तो देखो, आप सभी अपने आप को देख लीजिएगा, आज से 20 साल पहले जो कुछ हमारे पास थे सब कुछ अच्छा हुआ नहीं हुआ 20 साल में, मकान अच्छा हुआ, गाड़ी अच्छी, मोबाइल अच्छे, जूते चप्पल सब कुछ अच्छे, एक्सटर्नल चीजों को तो हमने बहुत अच्छा मेंटेन कर लिया। अगर इंटरनली अगर हम अपने आप को देखेंगे तो दिन प्रतिदिन इंटरनली हम क्या होते चले गए, इंटरनली हम कमजोर होते चले गए, हम कमजोरी हमारे अंदर आती चली गई। अब जो भी परिस्थिति, जो भी समस्या, जो भी सिचुएशन, उसको फेस करने के लिए इंटरनली हमें स्ट्रांग होना जरूरी या मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी या फिजिकली स्ट्रांग होना जरूरी, क्या कहेंगे आप? हाँ, कि जैसे खोखली चीज होती ना, देखने में बहुत सुंदर होती, अंदर से कमजोर होती, कमजोर चीज को एक भी चोट लग जाए तो क्या हो जाती, मुड़ जाती। ऐसी हमारी मन की छोटी सी बात हो गई, इरिटेट हो गई, तुरंत हमने रिएक्ट करने लग गए तुरंत। फिर क्या कहते दीदी, हमारे पास आते हैं बहुत से लोग, क्या कहते दीदी पता नहीं आजकल हमको क्या हो गया, छोटी छोटी बातों में हमें गुस्सा आने लग गया, पहले से कभी नहीं होता था, छोटी छोटी बातों में हम इरिटेट होने लग गए, तो छोटी छोटी बातों में हम क्या होते हैं, रिएक्ट होने लग जाते हैं। ये कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा, कहीं ना कहीं हम इंटरनल एक्सटर्नल चीजों को तो हमने मेंटेन कर लिया, इंटरनली हम कमजोर होते चले गए। तो ये मेडिटेशन हमको क्या सिखाता, ये मेडिटेशन हमको इंटरनली स्ट्रांग बनाओ। तो जब हम अपनी प्रायोरिटी को क्या बनाएंगे, भी बताइए, सब बताइए, सेट करके जाएंगे यहां से, अगर हम इंटरनली स्ट्रांग बनाना है तो अपनी लाइफ की, देखो स्वमान में कौन रहेगा, सम्मान भी, जब खुद अपने आप को सम्मान देगा दूसरा भी हमें सम्मानित करेगा। ऐसे भी डे टू डे लाइफ में भी देखो, किस व्यक्ति को आप सम्मान देते हो, अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी किसको सम्मान देते हो, आप किसको देते हो, जो ऑनेस्ट होगा, हार्ड वर्कर होगा, है ना, रेगुलर होगा, पंक्चुअल होगा, और अपनी दिनचर्या को देखो, अपनी दिनचर्या को सेट किया होता, ऐसी जो वैल्यूएबल पर्सनालिटी, अगर हमसे कोई पूछे तो हमें कौन व्यक्ति पसंद है, जो वैल्यूज जिसके अंदर होंगे वैसे वैल्यूएबल पर्सनालिटी, तो ये मेडिटेशन को ऐसे वैल्यूएबल पर्सनालिटी डेवलप कराता। फिर हम जब इंटरनली स्ट्रांग होंगे, ऐसी हमारी वैल्यूएबल पर्सनालिटी डेवलप होगी, तो हम दूसरों से चाहना नहीं, डिमांडिंग नेचर नहीं, दूसरा हमें समझे ये तो मुझे कुछ समझता ही नहीं है, तो ये कुछ मानता ही नहीं, अगर कोई दूसरा हमें पोस्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर सम्मान दे भी रहा है तो कौन सा दिल से दे रहा है या पोस्ट को कुर्सी को दे रहा है, किसको दे रहा है बे? तो वैल्यू बेस्ड पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो वो दिल से हमें सम्मानित करेगा, दिल से हमें रिगार्ड देगा, दिल से रिस्पेक्ट देगा। तो अभी आप सभी क्या सेट करेंगे अपनी लाइफ की प्रायोरिटी, सबसे पहला यूं या यूं कैसे चलेंगे, सबसे पहला संकल्प को श्रेष्ठ बनाना, जब संकल्प श्रेष्ठ होगा तो दूसरा जल्दी से बताओ समय हमारा क्या हो जाएगा। कोई ये तो नहीं कहेगा यहाँ के जा दीदी अच्छी अच्छी बातें तो हमने माउंट आबू में बहुत अच्छी सुनी, बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या करे जल्दी बढ़ना, बचना ही सुनाई, समय ही नहीं मिलता हमारे पास। अच्छी बातें सुन के तो गए, अच्छी बातों के लिए हमारे पास समय नहीं। तो आप ये शिकायत तो नहीं करोगे ना जा करके? अब आप इस प्रायोरिटी के साथ जाना, जब अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव एंड क्रिएटिव वे में प्रोसेस, हमारी एनर्जी जब पॉजिटिव वे में जाना शुरू करेगी, किसी भी शक्ति का सही सदुपयोग इंटरनली हमें स्ट्रांग बनाता है। तो जब हमारी संकल्प शक्ति पॉजिटिव एंड क्रिएटिव बनेगी, हमारा समय हमेशा श्रेष्ठ कार्य के लिए जाएगा। तो जब समय और संकल्प श्रेष्ठ होगा, तो उसका ऑटोमेटिकली हमारा स्वास्थ्य क्या हो जाएगा? किस किस की तबीयत खराब हो गई, हाथ उठाओ भाई। अच्छा, चलो भाई अपने लिए ताली बजाओ। सवेरे उठ रहे हो, सवेरे से लेकर रात तक बैठे हुए हो, कारण क्या है? शुद्ध वातावरण, सवेरे उठ रहे हो। सकता है बहुतों को आदत नहीं होगी सवेरे उठने की, यहाँ सवेरे भी उठ रहे, सारे क्लासेस अटेंड कर रहे हो, भगवान के घर का शुद्ध भोजन खा रहे हो, शुद्ध वाइब्रेशन को स्वीकार कर रहे हो। इसीलिए सब अपने आप को स्वस्थ, आत्मा भी अपने स्वरूप में स्थित है और तन भी आपका स्वस्थ अनुभव हो रहा, जो स्वस्थ ऑटोमेट फील कर रहे हो। यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन है ये 3-4 दिन का, तो फील कर रही हो, तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाएगा? हमारे कर्म कैसे होंगे? तो कर्म कभी आएगा कि मेडिटेशन करके समय अच्छा जाएगा, तो गलत कर्म करने का संकल्प भी आएगा, थॉट भी आएगा आपका मन में। इंटरनली आपकी बुद्धि आपको क्या करेगी? ब्रेक करेगी, आपको खींचेगी। तो कोई भी ऐसा कर्म नहीं करे, जैसे कल दीदी ने बताया ना, हमारे ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको फॉलो करने वाले देखने वाले बहुत बैठे हैं, हमेशा सोचो जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। तो ऐसा कर्म के प्रति अवेयर होगा। कर्म सिद्धांत क्या कहता है? किए हुए कर्म का फल, एक संसार में एक ऐसा फल है, और फलों को हम क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं, बांट सकते हैं। भाई मुझे केला अच्छा नहीं लगता, अब साथ वालों को भाई आप ले लेना, मुझे केला नहीं अच्छा, मुझे अमरूद अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं खाती। और चीजों को काट सकते हो, बांट सकते हो, लेकिन एक फल ऐसा है चाहे आपको खट्टा लगे, मीठा लगे, तीखा लगे, खारा लगे, खाना ही पड़ेगा। वो कौन सा फल है? कर्म का फल। जिस फल को हमें खुद को खाना है, वो कौन सा बीज बोएंगे हम? कौन सा बीज बोएंगे? श्रेष्ठ कर्म का ही बीज बोएंगे। तो जब श्रेष्ठ समय हमारा होगा, तो हमारे संकल्प क्या हो जाएंगे? तो ऐसी वैल्यूएबल पर्सनालिटी हमारी बन जाएगी। तो यहाँ परमात्मा ने हम सबको ऐसी पर्सनालिटी वाले व्यक्ति जहां भी बैठेगा, हमने अपनी आंखों से अपनी दादियों को देखा है, ऐसे मैग्नेटिक पर्सनालिटी थी दादी को। दादी कुछ नहीं भी सुनाए, हमारा मन करता दादियों के पास जाए, दादियों को देखे, दादियों से शक्ति ले ले। वो इतना शक्तियों को रेडिएट करती थी, उनके पास जाने से हमको वाइब्रेशन फील होता था। तो आप सभी बन सकते हो, नहीं बन सकते ऐसे? तो ईश्वर ने इसीलिए आपको यहाँ बुलाया है। ऐसे एक एक आप ईश्वर के अनमोल रतन हो। यहाँ जितने भी आए हुए हैं, एक एक ऐसी मैग्नेटिक पर्सनालिटी बन जाएगी। आप जिस ऑफिस में, जिस वर्क प्लेस में, जिस घर में रहेंगे, उन वाइब्रेशंस को आप रेडिएट करने वाले, रेडिएशन फैलाने वाले, ऐसे शक्तिशाली आत्मा बन करके जाएंगे। तो ऐसी मेरी शुभ भावना है। तो ये सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के एक सिंपल से मेथड, देखो इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, या आपने कर्म क्षेत्र से अलग से समय निकालना पड़ेगा इन चीजों के लिए, अलग से निकालने की जरूरत नहीं। जिस घर में रह रहे हो, जिस संबंध में, कई बार ब्रह्मा कुमारी इसके प्रति तो लोगों के मन के, अरे वहां जाएंगे तो ये छूटेगा वो छूटेगा। तो वर्क प्लेस में जहां भी आप रह रहे, जिन संबंधों के बीच में, जिनके साथ रह रहे, हमने क्या कर लिया? अपने सॉफ्टवेयर को चेंज कर लिया, यहां से हमने अपने आप को चेंज कर लिया। हार्डवेयर क्या है? एज इट इज है, हार्डवेयर एज इट इज है। सॉफ्टवेयर में अच्छे अच्छे एप्स को अभी हम डाउनलोड करके जाएंगे। जब आपका मोबाइल खुलेगा तो क्या हो जाएगा? कौन सी चीज आएगा? आपको कहना नहीं पड़ेगा कि भाई ये फॉरवर्ड करे, इनके देखे, वो चीज खोल करके देखे। आप अपने आप के अंदर इतने शक्तिशाली बनेंगे, आपके द्वारा हर संबंध में, हर प्रभाव से, हर वर्क प्लेस में एक प्रेम, शांति, खुशी, आनंद के वाइब्रेशन फैलाने वाले ऐसी श्रेष्ठ आत्मा बनेंगे। तो अभी 2-4 मिनट में और आपका समय ले करके इन चीजों को हम कैसे फील करें, ठीक है? चलेंगे अभी, अभी हम सब खुद फील करेंगे। अब अपने अपने ऑफिस को भी मैं याद कराऊंगी, आज जा करके आप खुद उन वाइब्रेशंस को फैलाने का काम करिएगा। अपने आप को स्ट्रांग, अपने आप को शक्तिशाली ऐसे देने वाले या लेने वाले। आप सबने देवताओं के चित्र देखा है, कैसे होते? यूं होते, यूं होते। सभी करके दिखाइएगा एक बार, कैसे होते? यूं का मतलब देने वाले, देना। ऐसे कहते ना, दिया जब जलता है तो क्या कहते? दिया जलना शुभ होता है, बुझना अशुभ होता है। वो वाला दिया भी नवरात्रे आ रहे, 8 दिन जलाएंगे, 9 दिन होंगे, 10 दिन, 11, 12, 13 दिन में क्या होगा? वो तभी जलाते रहोगे? वो तो शांत होगा ही। लेकिन कौन सा दिया शुभ होता है? ये वाला दिया। दिया माना देना। क्या देना है हमको? सबके प्रति शुभ वाइब्रेशन, सबके प्रति शुभ दृष्टि, सबके प्रति शुभ बोल। क्यों? क्योंकि हम यहां से स्ट्रांग होंगे, फुलफिल होंगे, तो खाली मोबाइल, खाली कोई भी ये गैजेट होगा वो लेने वाला, डिस्चार्ज मोबाइल लेने वाला, चार्ज मोबाइल देने वाला। देवता का मतलब ही क्या है? देने वाला। आप देखो, नेचर का भी काम है, जितने भी यहां बैठे हुए हो, आपका सोफा आपसे ले रहा है, दे रहा है, दे रहा है। लाइट, फैन, माइक, टेबल, सब कुछ दे रहा है। ले कौन रहा? कौन ले रहा है? सिर्फ एक इंसान ही है, लेने में लगा पड़ा है। क्यों? क्योंकि अंदर से हम खाली है, डिस्चार्ज है, इसीलिए हम ले गए। अब यहां से क्या बनोगे आप? हम यहां से इतना भर करके जाएंगे, हम भी क्या बन जाएंगे? देने वाले बनेंगे। कैसे बनेंगे? उस दाता के साथ, उस सुप्रीम से कनेक्ट होंगे, तो फिर हम भी देने वाले। जहां भी बैठेंगे, डिमांडिंग नेचर नहीं, चाहिए नहीं, नहीं हम क्वेश्चन नहीं, कारण नहीं निवारण, समस्या नहीं समाधान, हम प्रश्न नहीं, हम कौन है? उत्तर है। सुना? वो वाला मोबाइल, वो वाले डिवाइसेस क्या कर रहे? अरे गूगल आजकल जो ना हर क्वेश्चन का जवाब देता है। उसको क्रिएट करने वाला कौन है? ह्यूमन बीइंग, मनुष्य ने बनाया उसको, तो बनाने वाले आप हो। आप बड़े हो, वो चीज बनी हुई चीज बड़ी है। आप बड़े हो, आप समाधान स्वरूप, आप समाधान बनने वाले, आप निवारण करने वाले, आप हर प्रश्न का उत्तर हर एक के पास है। जब आप सशक्त बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे, तो हर आपके पास क्लीन एंड क्लियर बुद्धि होने से हर समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए अभी हम कुछ मिनट के लिए अपने मन को सब तरफ से समेट कर स्वयं को देखें। आज तक मैंने शीशे में जिसको देखा, ये तो मेरा बाह्य स्वरूप था, ये मेरा हार्डवेयर है, इसके अंदर विराजमान अति सूक्ष्म अति सूक्ष्म एक चमकता सितारा, ये मेरी रियल आइडेंटिटी, मेरा मन अब मेरे पास आ गया। कितना जल्दी मेरा कहना मान गया। अब इस शुद्ध मन के साथ, शुद्ध संकल्प के साथ कुछ क्षण के लिए मैं एक अंतर जगत की यात्रा पर चल पड़ी। बाह्य जगत से पार, चांद सितारों के पार, सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर मैं स्वतंत्र पंछी, उड़ता पंछी बनकर एक ऐसे स्थान पे पहुंच गई हूं जो लाल सुनहरा, असीम शांति, असीम शक्ति का स्थान, मेरा निज घर है। हम सब सितारे इस सितारों की दुनिया में स्वयं को डबल लाइट फील कर रहे हैं, बिल्कुल हल्का, सब बंधनों से मुक्त, चमकता सितारा मेरे सामने, एक दिव्य सितारा अपनी शक्तिशाली किरण रूपी बाहें लेकर मुझे अपनी बाहों में समेट लिया। वो मेरे पिता परमात्मा हैं, जिनका सानिध्य मुझे शक्तिशाली प्रेम और आनंद का अनुभव करा रहा है। उस परम ज्योति परमात्मा के समीपता से मैं स्वयं को सशक्त अनुभव कर रही हूं। मन की सब कमजोरियां समाप्त, सशक्त सोचने वाले मन के साथ परमात्मा की उन शक्तिशाली किरणों को लेकर धीरे धीरे आकाश मार्ग से वापिस सब अपने अपने वर्क प्लेस को देखिए, घरों को देखो, आकाश मार्ग से आने वाली परमात्मा पिता की शक्तिशाली किरणें, ये पवित्र किरणें मेरे वर्क प्लेस पे, घर पे, हर एक के ऊपर पवित्र प्रकाश प्रवाहित होते हुए हर एक के चेहरे मुस्कुराते हुए स्थान का शुद्धिकरण हो रहा है। एक पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलते हुए सब एक दूसरे को सम्मान, प्रेम, स्नेह की भावना से देख रहे हैं। सर्वशक्तिमान का ये दिव्य प्रकाश मेरे वर्क प्लेस को, मेरे घर को शुद्ध पावन बना रहा है और मैं उस परमात्मा की दिव्य शक्ति को ओम शांति।
ताली बजा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, आपने बहुत ही सरलता के साथ आज हमारे सामने स्पष्ट किया कि हमारी आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम अपनी जागृति को सदा बनाए रखें, अवेयरनेस रहें। और ये भी बताया कि कभी किसी से अपनी तुलना ना करें और ना ही किसी को दोषारोपण करें। और साथ ही ये भी बताया कि हमें अपनी जिम्मेवारी को समझना है और क्या कहना है सदा, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। बोलिए सभी, मैं कर सकता हूँ। क्या कर सकते हैं? यहाँ पर बात आती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसके लिए दीदी ने बहुत अच्छी पांच बातें बताई, जिन पांच बातों का कनेक्शन बनाए रखना है, समय, संकल्प, श्रेष्ठ कर्म, संपत्ति और वेरी गुड। चलिए, सभी को याद है तो अपने ये पांच उंगलियों को संभाल के रखें और इन पांच बातों को संभाल के रखें। तो आपका दीदी जी बहुत बहुत धन्यवाद, ये बातें सदा ही याद रखेंगे और अपने आत्मोन्नति को बनाए रखेंगे। अभी हमारे बीच आदरणीय भाई सब पहुंचे हैं, डॉक्टर विनोद कुमार सिंह भाई जी, कलकत्ता वेस्ट बंगाल से आपका हार्दिक स्वागत है। और यहाँ पर आप अपना अनमोल समय निकाल कर पहुंचे हैं और इसी विषय पर अपने उद्बोधन देंगे। आप डायरेक्टर हैं नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन से, आपका डिपार्टमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आप यहाँ पर हैं और यहाँ पर गॉडली गवर्नमेंट के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो निश्चित है आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाए रखने के लिए और कौन सी बातें, आपका तो अनुभव रहा होगा तो वो सब हमें बताएंगे। आपके लिए तो मैं यही कहूंगी, आपके मन में सदा आता होगा जहां आत्मसम्मान की बात आए वहां पीछे हटना या झुकना मुझे आता नहीं, और जो रास्ता मुझे नीचा दिखाए उस पर मुझे चलना आता नहीं, उस पर चलना मुझे आता नहीं। निश्चित है आपकी यही भाव है और हमारे बीच इन बातों पर आप अपने वक्तव्य रखेंगे। आदरणीय भाई साहब,
धन्यवाद बहन जी। सर्वप्रथम मैं आत्मा अपने परमात्मा, परम पिता, परम शिक्षक, परम रक्षक, परम सद्गुरु सर्वशक्तिमान शिव बाबा को आवाहन कर रहा हूँ। बाबा ने आज मुझे अपनी गोदी में बैठाकर अपने जन्म तीर्थ स्थली में, जो पूरे ज्ञान का जो जन्म स्थली है, वहां पर बैठाकर मुझे अपनी भावनाओं को, अपने अनुभवों को शेयर करने का मौका दिया है। उसके लिए मैं सर्वप्रथम बाबा का आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरा आभारी हूँ, ऐसा संयोग है कि आज मैं उसी सम्मानित मंच पर अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ जहाँ पर मेरा अलौकिक जन्म हुआ था। मैं वर्ष 2018 में अपने गृह मंत्रालय का एक कार्यालय है जनगणना निदेशालय लखनऊ में पदस्थापित था और समय था 3:03 और तिथि थी 17 मार्च। मैं शिवानी दीदी को सुन रहा था ऑफिस में डेस्कटॉप पे, उनका यूट्यूब पर, और सुनते ही मेरे मन में अचानक ये भाव आया कि क्यों ना मैं भी छोड़ूं। बहुत सारे चीजों में जकड़ा हुआ हूं। उन्होंने लास्ट में एक वीडियो में कहा कि छोड़ो तो छूटोगे, छोड़ना होगा तब छूटेंगे आप, नहीं तो आप जकड़े रहेंगे। और इसी भाव से उद्वेलित होकर के दीदी जी, मैं अलीगंज का जो आपका सेंटर है जहाँ पे स्नेही दीदी और दीदियां रहती हैं, मैं वहां गया। आप ऐसा जानते हैं कि उस समय ब्रह्मा कुमारी के सभी सेंटर पर विश्राम का समय होता है, तो दीदियां विश्राम अवस्था में थी, फिर भी मैंने नॉक किया तो दरवाजा से आवाज आया कि थोड़ा वेट करिए, मैं आती हूँ। करीब वेट किया, फिर मैंने बोला कि मैं इस संस्था से जुड़ना चाहता हूं और यहाँ क्या होता है उसके बारे में मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा, भाई साहब आप कल सुबह आइए 7:00। दीदी, मैं 7:00 गया वहां पे, 7:00 गया, मेरे को एक फॉर्म भराया गया, उस पर मैंने अपना विवरण लिखा और राम सागर भाई वहां पे थे, समर्पित भाई हैं, उनको दीदी ने कहा कि ये आपका कोर्स कराएंगे। 7 दिन पहले आपको यहाँ पे बैठना होगा और कुछ बात को आपको जानना होगा, तभी आप मुरली सुन पाएंगे या ऊपर जाकर के बैठ पाएंगे। 7 दिन का कोर्स था, तरह तरह का प्रश्न मेरे दिमाग में था कि भारत में ही क्यों, इसी खंड पे भगवान क्यों अवतरित होते हैं बार बार। दुनिया में इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, मैं चूंकि जनसंख्या कार्यालय से था तो मुझे लगता था कि ये दिनों दिन इतनी जनसंख्याएं बढ़ रही हैं और यहाँ आत्माओं का आवागमन हो रहा है, तो सबसे ज्यादा जन्म दर भारत में ही क्यों हो रहा है, यहाँ पर ही आत्माएं बार बार क्यों आ रही हैं। ये इस तरह के कई सारे हमारे प्रश्न थे, लेकिन जब पहले दिन से 7वें दिन तक का जब जर्नी पूरा हुआ कि मैं कौन, मेरा कर्म क्या, मेरा धर्म क्या, मेरा धाम क्या, मेरा पिता कौन, और अंत में मेरा उद्देश्य क्या, जीवन का उद्देश्य क्या, जब इन बातों को समझ लिया और काफी तीव्र ढंग से मैं इससे मुरली से जुड़ता गया और इतना अध्ययन किया कि जगदीश भाई की जितनी भी रचनाएं थी मैंने 3 महीने में पूरा पढ़ लिया। बाबा ने उसी समय मुरली में कहा कि बच्चों अब ये समय चढ़ती कला का नहीं है, अब ये उड़ती कला का समय है, आप लोगों को उड़ना होगा और उड़ करके अपने पुरुषार्थ को तीव्रता से बढ़ाना होगा। इसी क्रम में दीदी सुमन दीदी हैं, जानकीपुरम की इंचार्ज हैं, जहाँ की दीदी इंचार्ज हैं राधा दीदी, वहां पर उन्होंने मुझे एक स्पार्क विंग का अगस्त में कॉन्फ्रेंस हुआ था 2018 में, मुझे 3 महीने में ही यहाँ भेज दिया कि आप जाइए उस स्पार्क विंग को अटेंड करिए कॉन्फ्रेंस को। मैं अटेंड किया, उसमें इतना लाभान्वित हुआ और मैं स्पार्क विंग का उसी समय लाइफ मेंबर बन गया और तब से मैं लाइफ मेंबर हूँ। और इसके बाद फिर बाबा मिलन हुआ नवंबर में, उसमें भी आने का सौभाग्य मिला 2018 में, और 1 साल में मैंने बहुत कुछ पढ़ा। जो ज्ञान, जो पहला जो कोर्स है इसका, इस संस्था का, ज्ञान योग धारणा और सेवा, तो ज्ञान को पहले मैंने बहुत पढ़ा, बहुत पढ़ करके समझने की कोशिश किया, और दूसरा उसी विषय में उसी समय फिर मेरा स्थानांतरण लखनऊ से पटना हो गया। पटना आया तो वहां पर कई सेंटर्स थे, कंकड़बाग है जहाँ पे संगीता दीदी प्रभारी हैं, और उसी बीच में लखनऊ में 3 विभूतियों का आगमन हुआ जिसमें सूरज भाई, मोहित भाई और शिवानी दीदी, ये 3 विभूतियां आई, और तीनों का क्लास सुनकर करके मुझे जीवन में जो परिवर्तन मिला है मैं आपको क्रम से बताऊंगा कि कैसा परिवर्तन हुआ है। और बाबा को अगर आपने GPS बना लिया, GPS सभी लोग साइंस से जुड़े हुए हैं, अगर GPS समझ लिया उनको, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम अगर उसको समझ कर करके आपने उनको धारण कर लिया या ध्यान कर लिया, तो आपके जीवन में सिर्फ परिवर्तन नहीं पूरा यू टर्न हो सकता है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है दीदी। पटना से आया, बहुत पटना जब आया तो वहाँ पे सेंटर कंकड़बाग में है, वहाँ पे हमारी संगीता दीदी इंचार्ज हैं, और एक और सेंटर है वहाँ पे रविंदर भाई साहब देख रेख करते हैं खाजपुरा में, तो वहाँ मैं अपना ज्ञान लेता रहा। और पूरा उस जो 2019 से लेकर के और 23 के मध्य के बीच में मैं बहुत सारा सेवा में अपना योगदान दिया, नशा मुक्ति अभियान जो भारत सरकार का था और ब्रह्मा कुमारी का, उसमें मैंने सारे कार्यालयों में जाकर करके वहां पे बहुत सारा काम किया। इसी बीच में फिर मेरा स्थानांतरण दिल्ली हो गया, वहां भी गया, वहां भी मैं सेंटर जो आरकेपुरम का है वहां से जुड़ा। उसी बीच में विदेश जाना भी हुआ नीदरलैंड में, तो वहां भी हिल्टन होटल के सामने ही नीदरलैंड में बाबा का सेंटर है, मैं ऐसा सौभाग्यशाली हुआ कि मैं वहां भी जाकर के मुरली अटेंड किया दीदी, और मुझे अच्छा खाना मिला वहां पे। सुरिनाम के भाई साहब हरीश जी थे, उन्होंने रोज मेरे लिए 7 बजे बाबा का प्रसाद मुरली के बाद वो अपने से बना करके लाते थे, तो इतना मैं सौभाग्यशाली हूँ। तो बाबा के जितने भी सेंटर्स हैं, अगर आप दिल से जुड़े हैं तो बाबा आपके लिए हर जगह। अभी रिसेंटली मैं 27 तारीख को कनाडा से वैंकूवर से आया हूँ, उसी दिन शिवानी दीदी का वहां प्रोग्राम था, तो इंडियन कॉन्सुलेट को मैं कहा कि भाई मैं बहुत शाकाहारी खाना हूं, मैं कहीं का खाना नहीं खा सकता और वेजिटेरियन खाना तो बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने मुझे, इंडियन कॉन्सुलेट ने मुझे उस संस्था से जोड़ करके और मेरे लिए शाकाहारी खाना का व्यवस्था किया। तो ये तो है बाबा की कृपा। अब मैं आता हूँ कलकत्ता। कलकत्ता में मैं 21 नवंबर 2023 से मैं पदस्थापित हूँ निदेशक के पद पर। वहां पर एल्गिन रोड है, एल्गिन रोड में ईस्टर्न जोन का हेडक्वार्टर है, जहां पे बीके कानन दीदी जोनल हेडक्वार्टर की इंचार्ज हैं और उनके सनिधि में और बाबा के सानिध्य में मैं रोज ज्ञान लेता हूं दीदी। सुबह जाता हूं मुरली पढ़ कर करके निजाम पैलेस से मैं सॉल्ट लेक जाता हूं। तो ये समय मैं वॉकिंग छोड़ देता हूं लेकिन मुरली नहीं छोड़ता हूं। ये हमारे को सामंजस्य बैठाने में थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन हमने इसको जारी रखा हुआ है। तो ये है परिवर्तन। अब इस बीच में मिला क्या हमें परिवर्तन जिसको कहते हैं अनुभव, ये तो जुड़ने का लाभ, इस बीच में हमें मिला क्या? हमें बहुत कुछ मिला। बाबा ने हमें इस फर्श से उठा करके अर्श पे ले आए। बाबा ने ऐसा ऐसा चमत्कार किया कि मुझे, मैं क्लास वन ऑफिसर था भारत सरकार में, लेकिन बाबा के चमत्कार देखिए कि एक ही महीने में हमको ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के डायरेक्टर लेवल 14 में अपॉइंटमेंट, ACC अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट से हमको अप्रूवल, मतलब अपॉइंटमेंट दे करके यहाँ पे पदस्थापित कर दिए। तो ये है एक साधारण आदमी का, आप साधारण आदमी होकर के भी असाधारण बन सकते हैं। विदाउट सोर्स, बिना इन्फ्लुएंस, एक साधारण आदमी को यहां से वहां तक पहुंचाने वाला शक्तिमान, सर्वशक्तिमान सिर्फ बाबा है। जैसे हम लोगों को भीड़ से निकाल करके कहां तक ले गए। तो आज मैं गौरवान्वित हूं और आने के बाद लगातार दीदी, जहां हम देश में घूमने के लिए भी तरसते थे, बाबा पिछले 2 साल में हमको 4 विदेशों में भी यात्रा करा दिया और विदेशों के सेंटर्स जो बाबा के बने हुए हैं वहां पर भी पहुंचा दिया। अब आता हूं मैं विषय पे। विषय जो है इन्हांसिंग सेल्फ रिस्पेक्ट। ये सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी धरती है। दीदी ने कहा कि ना हम झुकेंगे उससे, ना समझौता करेंगे। यही पूंजी थी हमारी जीवन की। लेकिन जब बीच के जब ट्रांजिशन फेज में होते हैं तो आपकी सारी चीजें हिलने लगती हैं, और जब हिलती हैं तो सिर्फ एक ही विकल्प रहता है, आपका आत्मसम्मान। जो आत्मसम्मान ही आपको गिरने से भी रोकता है, झुकने से भी रोकता है और आगे बढ़ने का एक मौका भी देता है, तो वो मुझे मिला। मैं 7 बातें कहूंगा ए से जी तक 7 बातों। ए फॉर LY। आप केमिस्ट्री के सभी विद्यार्थी रहे होंगे, पढ़े होंगे कि जितने भी धातु हैं उसमें कुछ न कुछ LY हैं। जब मैंने देखा कि मेरे जीवन में इतनी कड़वाहट, इतनी बेचैनी क्यों है, तो मैंने देखा कि जो कोर्स किया तो उसमें बताया ये 7 गुण हैं और आपके अंदर ही हैं, आत्मा के 7 गुण हैं। तो 7 गुणों के साथ ये हमारा निज स्वरूप में हम क्यों नहीं बने पा रहे हैं, तो देखा कि मेरे अंदर LY भरा हुआ है। वो LY क्या है? हमारे अंदर कामना, हमारे अंदर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इसके जितने भी अंश और वंश हैं वो भी साथ में थे। किसी से बदला लेने की भावना, ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना, इस तरह की अपने विचारों को थोपने की भावना, इस तरह के LY जो हमारे जीवन में थे। तो मैंने गुणों से कोरिलेट किया कि अगर मेरे अंदर पवित्रता की शक्ति है तो हम कामना की पर विजय पा सकते हैं, अगर हमारे शांति की शक्ति है तो हम क्रोध पर विजय पा सकते हैं, अगर हमारे प्यार का है तो हम मोह लोभ को त्याग सकते हैं, और जो हमारा मोह है उससे हम स्नेह से भर सकते हैं, और अहंकार को हम संयम और सेल्फ रिस्पेक्ट से भर सकते हैं। तो पहला ए जो था LY, इस पर हमने काम करना शुरू किया अपने ऊपर, और इस LY को धीरे 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 कम करते हुए आज आपके बीच में हूं कि आज हम यहां बैठे हैं। नहीं तो यहाँ आने की शक्ति नहीं है। दीदी ने कहा ना कि आप कितना भी प्लान बना लो, कितना भी सोच लो यहाँ आने का, यहाँ वही आत्मा आ सकती है जिस पर बाबा की नजर है और बाबा की कृपा, अन्यथा कोई पहुंच नहीं सकता। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। दूसरा जो था कि मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को और कैसे ऊंचा करूं, तो सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम, 2 चीजें हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट एक लोअर है और सेल्फ स्टीम इसका हायर वर्जन है, हायर कॉन्शियसनेस है। तो इस दोनों को मेंटेन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने अंदर की भोग वृत्ति को कम करना, भोगना, बी से भोग, भोग वृत्ति। भोग वृत्ति क्या है? हम सुख में डूबे हुए हैं, स्पर्श सुख में डूबे हुए हैं। किसी का स्पर्श, चमड़ी का स्पर्श है, कर्ण का, कर्ण सुख है। हम शब्दों के जाल से भी खुशी हो जाते हैं, माया जाल में फंस जाते हैं। कान चुगली सुनने की आदत हो जाती है, प्रशंसा सुनने की आदत हो जाती है, स्तुति निंदा सुनने की आदत हो जाती है, उसमें हम बेचैन हो जाते हैं। तो हमें आज भोग वृत्ति को समाप्त करने के लिए, हम भोग वृत्ति को समाप्त करके हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को और सेल्फ स्टीम को बढ़ा सकते हैं। तीसरा चीज सी है, ABC। सी क्या है? कंपेनियन। आपका साथ कौन है, आपका साथी कौन है? तो सबसे पहले जो अष्ट शक्ति है उसमें है विस्तार को सार करना। तो सार करने का मतलब है कि आपको विड्रॉ करना होगा, जो गलत संगत है उससे आपको विड्रॉ करना होगा, और एक जो सच्चा है जो सुप्रीम सत्य है उसको साथी बनाना होगा, तभी आप सेल्फ इस्टीम में रह सकते हैं। अदरवाइज आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को धूमिल करने के लिए हर वक्त वातावरण तैयार है। इसलिए परम सत्ता को, परम पिता को अपना साथी बनाएं, तो आपको हमेशा आपको सेल्फ इस्टीम बने रहेंगे। डी है हमारा डिपेंडेंसी। हम किस बात पर डिपेंडेंस है? दूसरे के अप्रूवल पर? दूसरे से हमें अपनी बात को स्वीकार करने के लिए क्या हमको दूसरे का अनुमोदन चाहिए, स्वीकारोक्ति चाहिए, प्रशंसा चाहिए, तब हम खुश रहेंगे? ये आश्रित, क्या मेरे लिए वो अच्छा सोचेगा तभी मैं खुश हो सकता हूँ? तो इस तरह की डिपेंडेंसी से मुक्त होकर करके ही हम सेल्फ रेस्पेक्ट या सेल्फ इस्टीम को प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा चीज है दीदी इम्पिटीनेस, खालीपन। खालीपन आदमी को बेचैन करता है, लेकिन खालीपन को अगर आप बाबा को ज्ञान प्राप्त करते हैं तो दो चीजें आपको मिलता है, कहते हैं अकेलापन और एकांत। अकेला रहना मुश्किल है, लेकिन एकांत में रहना मुश्किल नहीं है। एकांत क्या है? एक के अंत में। एक कौन है? सुप्रीम, शिव बाबा। अगर उसके साथ आप जुड़ जाते हैं तो दुनिया में किसी भी अकेलापन का महसूस नहीं होगा। इसलिए एक के अंत में रहना, एकांत में रहना बहुत जरूरी है। और एकांत में रहेंगे तो आप चिंतन करेंगे, अपने विवेक का सही इस्तेमाल करेंगे, तो आपको सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ इस्टीम बना रहेगा। इसके बाद होता है एफ। एफ एक बहुत फॉरगेटफुलनेस, हम विस्मृति नहीं कर पाते हैं, लोगों को भूल नहीं पाते हैं, बातों को भूल नहीं पाते हैं। तो अगर हम बातों को भूलना शुरू कर दें, लर्न टू अनलर्न, एक अंग्रेजी में कहावत है लर्न टू अनलर्न, हम यहाँ भी आए हुए हैं पूर्व धारणाओं पूर्ण विचारों से भरे हुए हैं, तो हमें पहले ये सीखना होगा कि हमें जो भरी हुई चीजें हैं उसको विस्मृत करना होगा और नई स्मृति बनानी होगी। जब नई स्मृति क्या होगा, हम अपने सतयुग की स्मृति बनाएंगे, अपने सतोगुणों की स्मृति में रहेंगे, अपने अष्ट शक्तियों की स्मृति में रहेंगे, तो हमारी वृत्ति भी अच्छी बनेगी, हमारी कर्म जिसको कृति बोलते हैं वह भी पवित्र हो जाएगी, और अंत में होती है सृष्टि जिसको संसार कहते हैं, तो हमारा व्यक्तिगत संसार भी उज्ज्वल और पवित्र होगा। और अंत में दीदी होता है जी, जिसको गिल्ट गिल्ट कहते हैं। हर आदमी अपने कर्मों में दिनचर्या में गिल्ट कॉन्शियस होता है, अपराध भाव से ग्रसित होता है कि मैंने ये गलती कर दिया, तो उस भाव में नहीं रहना, अपने आप को हमेशा कोसना नहीं है। आप गिल्ट भाव से बाहर रहेंगे तो आपको आपके अंदर ये सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा जागेगा। कोई गलती हो गया, चलो मैं इस गलती से दोबारा नहीं करूंगा और इस गलती को दोहराऊंगा नहीं, तब भी आप आगे बढ़ कर कर करके आप अपने सेल्फ इस्टीम को बनाए रख सकते हैं। अंत में सिर्फ दो चीजें कहूंगा कि ये मोबाइल है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बात दीदी कर रही थी, ये इसमें बहुत सारे चीज भरे हुए हैं, इसमें सिम है, इसमें सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन आप सिम का मतलब समझते हैं? सिम एस आई एम, एस स्टैंड्स फॉर सोल, आई स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्ट एंड एम स्टैंड्स फॉर माइंड। तो ये तीनों को रिचार्ज कैसे करेंगे? इनके तीनों का आहार अलग है, इन तीनों को सिम के लिए भोजन अलग अलग है, तो इस सिम को तो आप रिचार्ज कर सकते हैं, मेडिटेशन से कर सकते हैं, अपनी विचारों को शुद्ध, अपने मन को शुद्ध विचारों से भोजन उसको दे सकते हैं। इंटेलेक्ट को हम अच्छे ज्ञान, अच्छे संपर्क, अच्छे संगत, अच्छे संग से हम उसको दे सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर सिम है और इसके अंदर अगर ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेटर की सर्विसेज नहीं है, तो भी सिम नहीं चलेगा। ऑपरेटर मतलब इसमें रिचार्ज नहीं, खत्म हो गया आज तक के, मान लीजिए आप बीएसएनएल का यूज कर रहे हो, बीएसएनएल का टॉपअप वैलिडिटी खत्म हो गया, तो भी न सिम काम करेगा ना कोई एप्लीकेशन काम करेगा। तो वो ऑपरेटर हमारा शिव बाबा है, और उस शिव बाबा से, उस ऑपरेटर से हमें जुड़ना होगा, तभी हम अपने सिम को भी ठीक रखेंगे और अपने एप्लीकेशन को ठीक रखेंगे। और हम अंत में सिर्फ ये कहेंगे कि मीट द टीम एवरी डे। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि हर डे मीट द टीम। टीम क्या है? आपका टीम होना चाहिए, आपका टीम, TEAM, आपका थॉट। अपने रोज पॉजिटिव विचारों से मिलिए, अपने अंदर जो उत्पन्न होने वाले विचारों, जो लहर हैं, इमोशंस हैं, उनसे मिलिए। अपने एटीट्यूड को देखिए कि मेरा एटीट्यूड कैसा है लोगों के प्रति, अपने प्रति, और अंत में अपना जो माइंड है, जिसको मन कहते हैं, वो मन जो मंत्री का रूप में काम करता है, बुद्धि हमारा महामंत्री है, तो इस मंत्री को हमेशा ये बताना है कि तू मेरा एक दोस्त है, तुम हमेशा मेरे साथ रहता है और तू हमेशा हमको बाबा से जोड़े रहता है और तू ही एक ऐसा है जो हमें सफलता दिला सकता है। इस मन को अगर हम इस टीम से अगर रोज मिलते रहेंगे तो हमारी सफलता, हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट, हमारी सेल्फ स्टीम बनी रहेगी। इन्हीं बातों के साथ आप इस सभागार में उपस्थित सभी प्रभु पसंद आत्माओं को मेरा नंदन वंदन और अभिनंदन, और इस सम्मानित मंच पर दोनों बैठे परमपिता परमात्मा के फरिश्तों को मेरा सादर नमन। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। निश्चित है कर बुलंदी को इतना बुलंद कि परमात्मा भी आकर पूछे कि बंदे तेरी रजा क्या है, बंदे तेरी रजा क्या है। अपने आत्मविश्वास को इतना बढ़ाइए कि परमात्मा भी हमारे कार्य को करने के लिए तैयार हो जाए। कह सकते हैं कि आप महलों में रहो या बस्ती में, महंगाई में रहो या सस्ती में, लहरों में रहो या कश्ती में, पर रहो सदा प्रभु की मस्ती में, रहो सदा प्रभु की मस्ती में। जो रहता है प्रभु की मस्ती में तो चार चांद लग जाते हैं उनकी हस्ती में, चार चांद लग जाते हैं उनकी हस्ती में। तो परमात्मा से अपना कनेक्शन बना के रखिए और अपने आप को आत्मशक्ति से, आत्मसम्मान से, आत्मविश्वास से सदा भरपूर रखिए। और अपनी इसी एक्सपीरियंस की इस कड़ी में एक विशेष परमात्मा के और एक अनुभवी वक्तागण आ रहे हैं, अपने आबू रोड से ही पहुंचे हुए हैं, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय भ्राता श्री धरण भाई जी, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मॉडर्न इंसुलेटर्स लिमिटेड और आबू रोड से आप पहुंचे हुए हैं, आपका भी जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत है मंच पर। आप भी अपना दो मिनट में कुछ अपना एक्सपीरियंस रखना चाहते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिवादन है।
नमस्कार, मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। वी विल जस्ट शेयर अवर एक्सपीरियंस एंड हाउ वी बिल्ड अप द टीम एंड क्रिएट अ कॉन्फिडेंस इन द पीपल एंड ऑल्सो टू एनहांस देयर सेल्फ एस्टीम। इन अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वी हैव डिफरेंट टाइप्स। वी हैव वेरी फ्रेश पीपल इन द शॉप फ्लोर, we have no exposure, they are totally not skilled at all, not even semi skilled. That's the type of category what we have. We also have team where we have semi skilled people, then we have engineers, then we have managers, and then we have people of the cadre. So the work which have got to be done are classified into two or three. One are what are called, which are very routine in nature, which calls for skill and also coming out with a creative for improving the product. Whatever we do, we call it productivity improvement. We call it developing new applications, catering to new customers for a very specific application. In this, what becomes very important are doing it on time, doing it consistently, and doing it cost effectively. So what do we do? The people who join us, the organization, we first train them on what this organization stands for, the products, what we are supplying, where does it go, and then we just say what are the rules and regulations, and we train them on the routine work, what they are expected to do. So telling them in one time will not yield any result. So we have a training where it is a combination of both theoretical, where we explain, and also on the job training what we do. So when you do it, there are people the habits die hard. So we'll have to work on changing their habits also. For example, if in the shop floor you are supposed to enter on time, maintain discipline, maintain cleanliness, it becomes very difficult. So they've got to be trained on that. And the people who are training them should have the patience to train them. Understand, anticipate that people will be like this, have the patience and then train them. And then once that is done, then we train them to the higher level and it goes on. So what is very important is to convey, we believe that the place of work is a place of worship. The factory is a mandir. The customers, we add value to the customers. It is not a pure transaction. We look for long-term association. We look for continuous business. And we look for customers being added. All these things can come only if the approach is very ethical, it is fair, it is consistent, and the people behavior makes a big difference. We say if a customer is lost, we say 68% or 70%, the reasoning is the behavior of an individual, which loses, make the customer unhappy and then they lose. To get back a customer, it is very difficult. So such customers, it is very difficult. So the people of all have to be trained on proper behavior, consistency and balance. If this has got to be done, then we will have to take, as we grow up, what becomes important is not only training, what becomes important is to take out their good points and build the team on that. So many problems in the shop floor, we call it a group activity, we call it a cross-functional team. And this cross-functional team, we tell them this is a problem, and then we say, try to give with your solution. And if you see there, many people have come out with very genuine ingenuity solutions which help us to solve the problem. What we have been able to, not able to discuss even at a higher level, people have come out with very innovative and ingenuity in bringing the problem solving. So that's what we encourage. And once we do that, the people have to be recognized. It is not only voluntary part, it is acknowledging their contribution and increasing their self-confidence. That's what is very important. So we also impart what we bring regularly, like a cultural program, where we say what one should stand for, the principles, the ethics in life, and consistency is what we just do. We also train the people on the ability to say a firm no. It may be a customer, could be a stakeholder, firm no. So what is fair and what is unfair? I think we try to tell them and then we try to build it. At the end of the day, a contribution of all this put together, properly integrated, makes the organization to grow, make the people to be happy. We would like employees to be, they must cherish working there. They must enjoy working there. So that's what we work on. And this can come only with a combination of their skill, their maintaining their principles in life, and enhancing what we call their self-respect. Their self-esteem, handling people means after you grow up the ladder, 70% of the time is spent on soft issues, and 30%, it may be many administrative things, you know, understanding people's inconvenience, attending to that, you know, any ideas coming up. There are many cases where, you know, like for example, Syntex in Gujarat, they came out with the product where they wanted to make these plastic drums and for storing chemicals. And by the time when they came in, the technology changed and this product line, whatever they invested, was of no use. So they started discussing, and at the higher level, they were not able to find a solution. Then somebody suggested, why not we ask all the people? So in different batches, the company workers were asked and then to give their opinion. I must say that one worker stood up and asked, why not this be used as a water tank? So others laughed at it. It was not shot down by the president. He took it seriously. He worked on it. And later on, you know, he introduced it. First, the market did not accept. But with some creative advertisements, the message was conveyed. And then it became a big success. So the people, whoever at whatever level, the intellect is there, their ability is there, give the self-respect to them, treat them with power, and that makes a team, a good team. What is important is not only forming a good team, it is have to have a good harmony. Only when the harmony is there, a good energy is, you can see that. In organization, we see that a good energy becomes very, very important. They will have to be energetic, and then they will have to give that will help them to give the full value to their organization, contribute much better. So this is what we do in an organization. This is what we want to share with all of you. Thank you so much.
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब. आपने ब्रह्मा कुमारीज में होने वाले जो भी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, ट्रेनिंग्स होते हैं, उनमें कितनी अच्छी बातें बताई जाती हैं, उसका आपने प्रैक्टिकल अनुभव अपना सुनाया, कैसे कस्टमर के साथ आपने डील किया और अपना आगे का कार्य किया. ऐसे और भी एक्सपीरियंस हैं आपके पास, जैसा हमें समझ में आ रहा है, लेकिन समय की सीमा देखते हुए आपका इतना एक्सपीरियंस भी यहाँ पर बैठे हुए जितने हैं सभी को बहुत शक्ति देगा. जो भी आप वैल्यूज लेकर के जा रहे हैं उनको अपने कार्य क्षेत्र में यूज करेंगे तो निश्चित है हम अपने आने वाले जो भी तनाव है, परिस्थितियां हैं, परेशानियां हैं, सबको सहज ही मुक्त कर सकते हैं. और जैसा कि बताया, परमात्मा से हमारा कनेक्शन सदा बनाए रखें. और आगे एक भी दूसरा सेमिनार होगा, एक दूसरी क्लासेस और होंगी अभी आगे, तो इसलिए कोई भी ऐसा ना सोचे कि ये कार्यक्रम अभी समाप्त है. थोड़ा सा सम्मान होगा हमारे मेहमानों का, मेडिटेशन होगा, उसके बाद दूसरी ट्रेनिंग चलेगी. और अभी हम सभी ने जैसा कि समझा, परमात्मा से हमेशा हमें अपना कनेक्शन बनाए रखना है. परमात्मा से बनाए रखेंगे कनेक्शन तो आपके सारे मिट जाएंगे टेंशन. अभी हमारे मेहमानों का स्वागत हो रहा है जो जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. और साथ ही हमारी ब्रह्मा कुमारी राधा जी से निवेदन है कि वो सभी का शॉल उड़ाकर जो मंच पर उपस्थित हैं गेस्ट का सम्मान करेंगे. और आप सभी ताली बजा कर अपना उत्साह वर्धन करें. जब कभी आपको बीच में कुछ भी ऐसा लगे कि थोड़ी सी एनर्जी कम लग रही है तो आप अपने आप को खुद मोटिवेट कर सकते हैं. तो सीधा हाथ ऊपर करेंगे, आंखें बंद करें, बोलिए ये हाथ भगवान का हाथ है, इस हाथ में बहुत शक्ति है, बहुत ऊर्जा है, बहुत शांति है, बहुत प्रेम है. अपने सिर पर रखिए ये हाथ, बोलिए मेरे सिर पर भगवान का हाथ है, भगवान की शक्ति मेरे साथ है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं सुखी आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं स्वस्थ हूँ. तथास्तु तथास्तु तथास्तु. आँख खोलेंगे, ये हाथ किसका हाथ है? भगवान का हाथ. अब इस हाथ को आप बगल में जो बैठे हैं क्रॉस में करके दूसरे के सिर पर हाथ रखेंगे, किसी का सिर खाली ना रहे इस टाइम पर, क्योंकि ये हाथ भगवान का हाथ है, किसी का सिर खाली ना रहे. फिर से आंखें बंद करें, बोलिए भगवान का हाथ मेरे साथी के सिर पर है, परमात्मा इनको सुखी रखना, स्वस्थ रखना, सुरक्षित रखना, निश्चिंत रखना, खुश रखना. तथास्तु तथास्तु तथास्तु. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. तो हमेशा दूसरों को देते चलिए तो अपने आप को भी एनर्जी मिलती रहेगी. तो जीवन जीने की यही है कला, करते चलो सबका भला. अभी हम सभी परमात्मा की याद में बैठेंगे, फिर नेक्स्ट अपना सेक्शन शुरू होगा. धन्यवाद सभी का. बहुत अच्छे से आप सभी ने इस कार्यक्रम को सुना. और मंच पर विराजमान सभी हमारे मेहमान, हमारे दीदी जी और जो भी इस कार्यक्रम के पीछे हमारे जो भी लाइट माइक वाले हैं, हमारे बड़े हैं, और परमात्मा का, सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद.
करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो